स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। आज सुनिए ज्ञान रंजन की लिखी कहानी फेंस के इधर और उधर। हमारे पड़ोस में अब मुखर्जी नहीं रहता, उसका तबादला हो गया है। अब जो नए आए हैं हमसे कोई वास्ता नहीं रखते। वो लोग पंजाबी लगते हैं या शायद पंजाबी ना भी हों, कुछ समझ नहीं आता उनके बारे में। जब से वो आए हैं उनके बारे में जानने की अजीब झुंझलाहट हो गई है। पता नहीं क्यों मुझसे अनासक्त नहीं रहा जाता। यात्राओं में भी सहयात्रियों से अपरिचित नहीं रहता। शायद ये स्वभाव है, लेकिन हमारे घर में कोई भी उन लोगों से अनासक्त नहीं है। हम लोग इज्जतदार हैं, बेटी बहू का मामला सब कुछ समझना पड़ता है, इसलिए हम लोग हमेशा समझते रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और नए पड़ोसी की गतिविधियों का इम्प्रेशन बनाते रहते हैं। मैं उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाना चाहता हूँ, उनके घर आना जाना चाहता हूँ, पर उन लोगों को मेरी भावनाओं की संभावना भी महसूस नहीं होती। शायद उनका जीवन सामान्य किस्म का नहीं है। वे अपने बरामदे के बाहर वाली कठोर भूमि के हिस्से पर कुर्सियां डाल दिन के काफी समय बैठे रहते हैं। उनकी ये कुर्सियां हमेशा वहीं पड़ी रहती हैं, रात को भी। वो लापरवाह लोग हैं, लेकिन उनकी कुर्सियां कभी चोरी नहीं गईं। हमारे मकान के एक तरफ सरकारी दफ्तर है और ऊंची ईंटों की दीवार भी। पीछे दो मंजिली इमारत के फ्लैटों का पिछवाड़ा है और सामने मुख्य सड़क। इस प्रकार हमारे परिवार को किसी दूसरे परिवार की प्रतीक्षण निकटता अब उपलब्ध नहीं है। बड़े शहरों में एक दूसरे से ताल्लुक ना रख अपने में ही जीने की जो विशेषता देखने को मिलती है, कुछ उन्हीं विशेषताओं और संस्कारों के लोग हमारे नए पड़ोसी लगते हैं। ये शहर और मोहल्ला दोनों शांत हैं। लोग मंथर गति से आते जाते और अपेक्षाकृत बेतकल्लुफी से चहलकदमी करते हैं, क्योंकि जीवन में तीव्रता नहीं है, इसलिए हमें अपने पड़ोसी विचित्र लगते हैं। मैं बाहर निकलता हूँ। वो लोग सुबह ही चाय ले रहे हैं, 9 बजे हैं। पति पत्नी के अलावा एक लड़की है, लड़की उनकी पुत्री होगी। ये तीन लोग ही हमेशा दिखाई पड़ते हैं, चौथा कोई नहीं। यूँ तो लड़की सुंदर नहीं, पर सलीके वाली युवती है। शायद ठीक से मेकअप करे तो सुंदर भी लगे। मैं देखता हूँ कि वो अक्सर और खूब हंसती है। उसके माँ बाप भी हंसते हैं। वो लोग हमेशा खुश ही नजर आते हैं। उनके पास कैसी बातें हैं और वो क्यों हमेशा हंसते हैं? क्या उनके जीवन में हंसते रहने के लिए ढेर सी सुखद परिस्थितियां हैं? क्या वो जिंदगी की कठिन और वास्तविक परिस्थितियों से गाफिल हैं? मुझे आश्चर्य होता है। मैं अपने घर और पड़ोसी परिवार की तुलना करने लगता हूँ। अभी अभी वो लोग मुझे चौंकाते हुए बेतरह हंसी में फूट पड़े हैं। मेरा ध्यान गुलाब की क्यारियों की तरफ था। मेरी खुरपी रुक गई, उनकी हंसी रुक नहीं पा रही है। लड़की कुर्सी छोड़कर उठ गई है। उसने छलकने के डर से चाय का प्याला अपनी माँ को थमा दिया है। वो सीधी नहीं खड़ी है, दोहरी हुई जा रही है। कोई चुटकुले सरी की बात होगी या चुटकुला ही जिसने उनमें हंसी का विस्फोट कर दिया है। लड़की हंसने से विवश हो गई है। उसे सुध नहीं है कि उसका दुपट्टा केवल एक कंधे पर रह गया है। उसकी छातियों से मुक्त और अबोध हरकत दिखती है। बहुत हो गया, उसकी माँ को अब उसे इस बेसुधी पर झिड़कना चाहिए। पता नहीं वो कैसी है कि उसे बुरा नहीं लगता। शायद मेरे अलावा उनमें से किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं है। मैं प्रतिदिन किंचित मजबूर हो जाता हूँ। मुझे अपने नए पड़ोसी के प्रति मन में एक विवश खिंचाव बढ़ता महसूस होता है। मैं ही क्यों, पप्पी भी तो अक्सर कौतूहल से भरी उस लड़की के कुर्ते के कपड़े की तारीफ करती रहती है। रसोई में से भाभी भी जब तब उनके घर की तरफ झांकती रहती है, और दादी को तो इतना तक पता रहता है कि कब पड़ोसी के यहाँ सिंघाड़ा और लौकी खरीदी गई और कब उनके यहाँ चूल्हा सुलगा है। इसके बावजूद वो लोग हम लोगों में रत्ती भर भी रुचि नहीं लेते। वो लड़की हमारी तरफ कभी नहीं देखती, उसके माँ बाप भी नहीं देखते। ऐसा भी नहीं लगता कि उनका हमारी तरफ ना देखना सप्रयास हो। बातचीत करने की स्थिति तो सुदूर और अकल्पनीय है। शायद उन्हें अपने संसार में हमारे प्रवेश की दरकार नहीं है। मुमकिन है कि वो हमें नीचा समझते हों, या उन्हें हमारी निकटता से किसी अशांति का संदेह और भय हो। पता नहीं इसमें कहां तक सच्चाई है, लेकिन उस लड़की के माँ बाप की आंखों में अपने घर की छाती पर एक जवान लड़का देखकर अपनी लड़की के प्रति वैसा भय नहीं भरता जैसा मेरे दोस्तों को देखकर मेरे पिता के मन में पप्पी के प्रति भर जाता है। उनके यहाँ रेडियो नहीं बजता, हमारे घर अक्सर जोर से बजता है। उनके घर के सामने छूछी जमीन है, कहीं एक भी दूब नहीं है। हमारे घर के सामने लॉन है, बगल में तरकारी की बाड़ी और तेज गंध वाले फूलों की क्यारियां भी हैं। वो लड़की क्यों नहीं मेरी बहन और भाभी को अपनी सहेली बना लेती? उसके माता पिता क्यों मेरे माता पिता से घुल मिल नहीं जाते? वो हमें अपने प्यालों से अधिक सुंदर प्यालों में चाय पीते हुए क्यों नहीं देखते? उनको चाहिए कि वो हमें अपने संपर्कों की सूची में जोड़ लें। उन्हें हमारी तमाम चीजों से ताल्लुक रखना चाहिए। फेंस पर ही हमारी तरफ घना ऊंचा इमली का पेड़ है, उसमें 6-6 इंच लंबी कलियां लटकती हैं। लड़कियों को इमली देखकर उन्माद हो जाता है, पर पड़ोस की ये लड़की फलियां देखकर भी कभी नहीं मचलती। उसने कभी हमारे पेड़ की इमलियां तोड़कर मुझे खुश नहीं किया। मैं प्रतीक्षा करता हूँ। हमारे पड़ोस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिसके लिए उन्होंने कभी हमारा सहयोग पाने की जरूरत समझी हो। जैसे हमारे घर और दूसरे घरों में बहुत ही अंदरूनी और छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, वैसी शायद इनके यहाँ नहीं है। नहीं होना एक अचंभा है। तीनों में से कभी किसी को चिंतातुर नहीं पाता हूँ। लड़की के पिता के ललाट पर शायद बल पड़ते हों और उसकी माँ कभी कभार अपने पर उबल भी पड़ती हो, लेकिन यहाँ से कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। संभव है कि लड़की के मन में उसका अपना कोई सर्वथा निजी कोना हो, कोई उलझन या जज्बाती कश्मकश हो या कतई ना हो, निश्चित कुछ नहीं समझा जा सकता। रात को अधिकतर उनके बीच वाले कमरे की रोशनी जलती है, जिसमें मुखर्जी अपने पूरे परिवार को लेकर सोता था। लगता है वो अंदर भी एक साथ बैठते और गुफ्तगू करते हैं। उनके पास इतिहीन गाथाएं होंगी और ऐसे वार्तालाप के अक्षय तृप्ति वाले विषय। स्वयमेव एक लंबी और ठंडी सांस छूट जाती है। हमारे घर में तो मौसम, मच्छर, बच्चों की पैदाइश, रिश्तेदारी की बहुएं, चूल्हा चौका तथा वर्तमान का कचूमर निकाल देने वाले भविष्य अतीत के दिव्य पुरुषों का ही बोलबाला रहता है। उनके और हमारे मकान के बीच की फेंस एक नाम मात्र का निषेध है। फेंस मिट्टी की 1 फुट ऊंची मेड़ भर है, कड़वा करौंदा और एक लंबे हिस्से तक सूखी ऐठी जंगली नागफनी का सिलसिला, अज्ञात नामों वाली कुछ झाड़ियां जिनकी जड़ों में हमेशा दीमक लगी रहती है। इन झाड़ियों की पत्तियां कड़े हरे रंग की हैं। मेड़ बीच बीच में कई स्थानों से कट चुकी है, रास्ते बन गए हैं। इन रास्तों से सब्जी और फल वाला आ जाता है, जमादारिन और अखबार का हॉकर आता है, पोस्टमैन और दूध वाला बरसों से इन्हीं रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। कुत्तों बिल्लियों के बेधड़क आने जाने तथा घास और फूल पौधे चरने वाले पशुओं से नुकसान सहने के बाद भी फेंस वैसी ही बनी हुई है। कुछ दिन पहले तक मुखर्जी की बच्ची शैला मेरे पास पुस्तक लेने इन्हीं रास्तों से आती रही है। यह इतनी सुविधाजनक और आसान फेंस है कि हम साइकिल से बिना उतरे कटे हुए हिस्सों से खिलवाड़ करते हुए इधर से उधर चले जा सकते हैं। पहले जाते भी थे, अब नहीं जाते, क्योंकि हमारे पड़ोसी के लिए फेंस कभी ना लांगने वाला अर्थ ही देती है। उन्हें आए 3 महीने हो गए हैं। अक्सर पढ़ने के लिए मैं अपना डेस्क बाहर निकालता रहता हूँ। बाहर हवा आजकल बड़ी सुखद लगती है, उसी तरह जैसे गर्मी की तेज प्यास में बर्फ जल। लेकिन बाहर पढ़ना दुश्वार हो जाता है, आंखें फेंस लांग जाती हैं, मन पड़ोसी के घर में मंडराने लगता है। युवा और असंपृक्त लड़की, खुश मिजाज और बेखौफ माता पिता, काश मैं उनके घर में ही पैदा हुआ होता, मन यूं ही उड़ता है। कभी कभी ये पड़ोसी लड़की अकेली ही बैठी रहती है, कोई काम करती हुई अथवा बेकाम। घूमते घूमते अपने मकान के परले तरफ वाली चार दीवारी तक चली जाती है। कोहनियाँ टिकाकर सड़क देखती है, लौट आती है। हमारे मोहल्ले में दूसरे मोहल्लों के आवारा लड़के भी खूब आते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले में भी कम नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अबोध और मुक्त रहती है। उसके डग छोटे और मस्त हैं। इसके विपरीत हमारे यहाँ तो भाभी पूजा के फूल भी पप्पी के साथ लेने निकलती हैं। वो बाहर भी डरती हैं और घर में भी। उन्हें डरा के रखा जाता है। पप्पी पर भी तेज निगाह है। एक बार पड़ोसन लड़की का पिता अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बात करने लगा तो तुरंत पप्पी को किसी बहाने घर के अंदर बुला लिया गया। फिर तो उस दृश्य ने हमारे घर में एक खलबली सी मचा दी। कितनी निर्लज्जता है। धीरे धीरे हमारे घर के लोग पड़ोसी को काफी खतरनाक सा समझने लगे हैं। दिन तो बीतते ही हैं। अब हमारे यहाँ जबरन पड़ोसी के प्रति रुचि लेकर अरुचि उगली जाने लगी है, जबकि हमारे लिए उनका होना बिल्कुल ना होने के बराबर है। धीरे धीरे हमारे घर में पड़ोसी की दुनिया की तमाम बुराइयों का रेफरेंस बना लिया गया है। हम लोगों की आंखें हजारों बार फेंस के पास जाती हैं। ज़रूरी गैर ज़रूरी रोज़मर्रा के सभी कामों के बीच ये भी एक रूटीन बन गया है। बहुत सी दूसरी चिंताओं के साथ मन में एक नई उद्विग्नता समाने लगी है। मैं खुद भी अपना बहुत सा समय ज़ाया करता हूँ, लेकिन उधर से कोई नज़र कभी इधर नहीं आती। पास कहीं आउटर ना पाकर खड़ा डीजल इंजन चीख रहा है। उसकी आवाज़ का नयापन चौंकाने वाला है। हम सब अभी थोड़ी देर तक डीजल इंजन के बारे में ही बातें करेंगे। आज वे पड़ोसी दोपहर से घर में नहीं हैं। उनके यहाँ 2-3 मेहमान सरी के लोग आकर ठहरे हैं। कोई हबड़ धबड़ नहीं है। रोज़ की ही सी निश्चिंतता। मैं उठकर अंदर गया। भाभी बाल सुखा रही हैं। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने पड़ोसी लड़की से मेरा संबंध जोड़कर एक गुपचुप ठिठोली की। मैं मन में हंसता बाहर आ गया। तभी वो लड़की और उसकी माँ भी पैक किया हुआ सामान लिए शायद बाजार से लौटी हैं। पिता पीछे रह गया होगा। शाम और दूसरी सुबह भी उनके यहाँ लोग आते जाते रहे, पर उन्हें ज्यादा नहीं कहा जा सकता। उनके घर एक साधारण पर्व सरीखा वातावरण उभर आया था, फीका फीका। लेकिन ये हम सबको चकित करने वाला समाचार लगा जब दूध वाले ने बताया कि उस लड़की का ब्याह पिछली रात को हुआ है। यहीं परेड का कोई बाबू है। आर्य समाज में शादी हुई है। भाभी ने मेरी ओर मजाकिया खेद से देखा और मुझे हंसी आ गई। बड़ी खुलकर हंसी आई ये सोचकर कि हम सब लोग कितने हवाई हैं। उनके घर 2-4 लोग बीच बीच में आ रहे हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर चले जाते हैं। ज्यादातर गंभीर और अनुशासन प्रिय लोग हैं। कभी कभी कुछ बच्चे इकट्ठे होकर किलकारते और दौड़ लगाते हैं। और कोई धूम नहीं है। सब कुछ आसानी सुविधा से होता हुआ जैसा। पता नहीं क्या और किस तरह होता हुआ। हमारे घर में ये बड़ी बेचैनी का दिन है। घंटों बाद वो लड़की बाहर आई। शायद पहली बार उसने साड़ी पहनी थी। साड़ी संभालते और हाथ में नारियल लिए हुए बरामदे में चली। वो चैतन्य है, लेकिन उसके मस्त डग साड़ी में लिपटकर कुछ संक्षिप्त हो गए हैं। वो अपनी दृष्टि में अगले कदम के दृश्य को भरकर चलती रही। उसने ना कोई आड़ ली और ना पति से सटकर चलने के बावजूद उसमें परंपरागत नववधू का सा संकुचित बांकपन और लाज ही उत्पन्न हुई। उसके पति की सूरत मुझे अपने किसी दोस्त सी लग रही है। कोई भी रो पीट नहीं रहा। लड़की की माँ उसके दोनों गालों को कई बार गहराई से चूम चुकी है। पिता उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं। अब लड़की की आंखों में हल्के पानी की चमक और नए जीवन का उत्साह छिप नहीं पा रहा है। फेंस के एक कोने से दूसरी तरफ गिलहरियां दौड़ रही हैं। अम्मा मुझसे लड़की के ना रोने पर आश्चर्य प्रकट कर रही हैं। उनके अनुसार वो पढ़ लिख जाने के कारण एक कठोर लड़की है जिसे अपने माँ बाप से सच्ची मोह ममता नहीं है। आजकल सभी ऐसे होते हैं। पेट काटकर जिन्हें पालो पोसो उन्हीं की आंखों में से बूंद आंसू नहीं। मेरे कानों को ऐसा कुछ सुनने की रुचि नहीं है। मैं ये देख रहा हूं कि अम्मा को धूप अच्छी लग रही है। धूप का टुकड़ा जिधर खिसकता है उसी तरफ माँ भी हट जाती हैं। लेकिन तभी पिता एक प्रशस्ति उपस्थित करते हैं। पहले जमाने में लड़कियां गांव की हद तक रोती थीं, जो नहीं रोती उन्हें मार कर रुलाया जाता था, नहीं तो उनका जीवन ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकता था। पिता को बड़ा दर्द होता कि आज वैसा नहीं रह गया है, पुराना जमाना जा रहा है और आदमी का दिल मशीन हो गया है, मशीन। ऐसे समय हमेशा पिता का स्वर तेज हो जाता है और आंखों में कलयुग के खंडहर नाचने लगते हैं। हमारे घर के आकाश पर बादलों के कुछ छोटे और अकेले टुकड़े आकर आगे निकल गए हैं। पड़ोसी लड़की को उसके माता पिता और रिश्तेदार अब पूरी तरह विदा करने के लिए फाटक तक पहुंचकर खड़े हैं। लड़के वाले वधु के लिए हेरल्ड लेकर आए हैं। हेरल्ड एक रंगीन कमरा लगती है। वो रंगीन कमरा धीरे धीरे खिसकने लगा, अब चला गया है। सबसे अधिक तौबा दादी को है। वो अपने अकेले में ही बड़बड़ा रही हैं। उन्हें ये ब्याह शादी बिल्कुल समझ नहीं आई। ना रोशन चौकी, ना धूम धड़ाका, ना तर पकवान, ऐसी कंजूसी किस काम की? और फिर ऐसे मौके पर पड़ोसी को ना पूछना। वाह रे इंसानियत, राम राम। वो लोग लड़की को विदा करके लौट आए हैं। उन लोगों ने अपने अपने लिए कुर्सियां ले ली हैं और बाहर ही बैठ गए हैं। लड़की के चले जाने के बाद उसकी माँ और सुस्त और संजीदा हो गई है। कई लोग मिलजुल कर उसके मन को गुदगुदाने की शायद चेष्टा कर रहे हैं। मेरा दोस्त राधु ये दावे के साथ साबित करने की कोशिश करता है कि वो लड़की दुनिया देखी हुई थी। एक गहरी कमी से उत्पन्न उदासी के अलावा मुझे कुछ और अनुभव नहीं होता। अजीब सा खालीपन, पीछे हटे रहने का खालीपन, अथवा उस लड़की के संबंध में राधु की लापरवाह धारणाओं से उत्पन्न खालीपन, बिल्कुल अज्ञात। लड़की के बच्चलन होने की बात कभी कभी एक पतित इत्मीनान भी देने लगती है। शायद मैं भी मन के किसी कोने में अपने घर वालों की ही तरह पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। रात शाम का कैंचुल उतार रही है। फेंस के पार टेबल के इर्द गिर्द बैठे लोग उठ उठ कर बिखर गए हैं। रोज की तरह पड़ोसी के पिछले कमरे में बिजली का लट्टू जल गया है। दरवाजे के कांचों के खुरचे हुए हिस्सों पर मटमैली रोशनी धब्बों की तरह चिपकी है। उनकी रात शांत और नियमानुसार हो चली है, पता नहीं उन्हें घर में एक व्यक्ति का कम हो जाना कैसा लग रहा होगा। हमारे घर तो पड़ोसी निंदा का बाजार बहुत गर्म है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।